नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा फिर से आपका चहिता कार्यक्रम लेके आई हूँ आह्वान। आपके ईमेल्स हमें मिलते रहते हैं और आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी ओम शांति। गीता दीदी, आज एक प्रश्न आया है, इनका नाम प्रिया है, ये दिल्ली से हैं। प्रिया कह रही हैं, मुझे आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपके ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उससे जुड़ी हुई हूँ और मेडिटेशन भी करती हूँ, बट जब मैं आपके आश्रम्स में जाती हूँ जो हमारे दिल्ली सेंटर्स में भी बने हुए हैं, वहाँ पर जब मैं गई वहाँ मेरे को दीदियों ने बोला कि आपको वाइट ड्रेस डालनी है और कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। वो थोड़े से रूल मुझे मींस या तो कहो स्टिक लगे या मैं उन रूल को फॉलो नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो प्रिया, हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप प्रोग्राम देख रही है, सुन रही है और आपको आध्यात्मिकता में रुचि है, ये सिद्ध होता है क्योंकि आप खुद भी हमारे कोई ना कोई सेंटर पर जा रही है। और अब मैं समझती हूँ कि आपको स्पष्ट है कि यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखाया जाता है, जिससे हमें मन की शांति मिलती है, हमारा मन एकाग्र होता है और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस प्रकार के अच्छे संग से हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं, हमारा व्यवहार भी अच्छा बनता है और इससे जो आत्मा के अंदर कमजोरियां हैं और जो बुराइयां हैं या अवगुण हैं, जो नेगेटिविटीज भरी हुई है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। ये मैं समझती हूँ कि आप खुद भी महसूस कर रही होगी। तो इससे स्पष्ट है प्रिया कि ये ज्ञान जो है एक प्रकार से आत्मा को क्योर करने का है। जैसे शरीर को क्योर करने के लिए हम दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि भाई बॉडी क्योर हो जाए, तो इसी प्रकार आत्मा के अंदर जो कमियां हैं, कई प्रकार के गुणों की, कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों की डेफिशिएंसी है ना, जिस गुण और शक्तियों के अभाव के कारण ही हमारे अंदर ये गुस्सा, नाराजगी, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, ये जो सारी बीमारियां आत्मा को होती है वो इसी के कारण होती है। तो अब जब हम ज्ञान और योग के द्वारा स्वयं को क्योर कर रहे हैं, तो जैसे बॉडी को हम क्योर करते हैं, दवाई लेते हैं, पर साथ साथ कुछ परहेज भी पालन करते हैं, है ना, ताकि वो बीमारी ज्यादा ना बढ़े और हम जल्दी से ठीक हो जाएं। मान लो मुझे डायबिटीज है, तो डॉक्टर कहेगा ना कि भी आप स्वीट ज्यादा नहीं खाना, ये एक परहेज वो हमें बताएगा ना। तो मैंने जो मीठा खाने से डायबिटीज हो रहा है तो वो खाने के लिए वो मना करेंगे। तो अगर हम परहेज पालन करें और दवाई भी लेते रहे तो हम जल्दी क्योर हो जाएंगे। पर जो चीजें खाने से बीमारी हो रही है वो भी हम खाते रहे और दवाई भी लेते रहे तो हम जल्दी ठीक नहीं होंगे, हमारा टाइम मनी वेस्ट होगा। तो इसी प्रकार जब हम मन और बुद्धि को, संस्कारों को शुद्ध बना रहे हैं और हम अपने अंदर गुणों का विकास कर रहे हैं, आत्मा को हम बुराइयों से मुक्त कर रहे हैं, तो उस हिसाब से दीदी ने आपको कुछ डिसिप्लिन बताई होगी, कुछ डिसिप्लिन बताई होगी कि भी आपका रूटीन कैसा हो, आपका आहार विहार कैसा हो, है ना, इस प्रकार आपकी ड्रेस किस प्रकार की हो, ताकि वो चीजें आपको योगी बनने में मददगार रहे। देखो, आहार, संग, फिर पहरवाइश, ये सब चीजें ऐसी है जो हमारे मन पर प्रभाव डालती है, है ना। अगर आज मैं बहुत ज्यादा अपने आप को अप टू डेट समझो कपड़े पहनाती हूँ, तो रोज जो नॉर्मल ड्रेस पहनने से मेरी बुद्धि एक दो बार उसमें जाएगी, जब मैं बिल्कुल नए अप टू डेट ड्रेस पहनूंगी तो मेरी बार बार उसमें बुद्धि जाएगी, तो थोड़ा सा तो प्रभाव आता है ना। इस प्रकार से कोई स्वादिष्ट चीज हम खाते हैं तो हमें फिर खाने की इच्छा होती है। तो जब हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो अगर हम साथ में कुछ इस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं तो हमें फायदा होता है, जल्दी रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैसे आप समझो स्टोव में पंप से हवा भर रहे हैं पर लीकेज भी है, तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी ज्यादा हवा भर नहीं सकेगी और टिकेगी नहीं। तो आपका काम क्या है कि भी पहले आप लीकेजेस बंद करो, तो फिर आप मेहनत करेंगे, पंप लगाएंगे तो हवा भर सकेंगे। इस प्रकार हम आध्यात्मिक ज्ञान और योग से अपने आप में शक्ति भर रहे हैं, अपने आप में शांति भर रहे हैं। तो जो हमारे लीकेज पॉइंट है जिसके कारण शांति चली जाती है, प्रेम चला जाता है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, इस प्रकार से जो लीकेजेस है तो हमें उनको बंद करना चाहिए। तो उस हिसाब से वहाँ की दीदी ने आपको कुछ नियम बताए होंगे, पर इससे आप भारी नहीं हो जाओ, इससे आप टेंस नहीं हो जाओ। आप इस बात को समझने की कोशिश करो और वहाँ की दीदी से भी आप पूछ सकते हैं कि इन नियमों का पालन करने की क्यों आवश्यकता है, इससे क्या फायदा है। तो वो भी कुछ अपने अनुभव की बातों से आपको बता सकती है। दूसरा, आपके साथ क्लास में और भी भाई बहने आते होंगे, वो लोग अनुभवी होते हैं, उनसे भी अगर आप मार्गदर्शन लेंगे तो वो तो और ही प्रैक्टिकली अपने अनुभव से बताएंगे कि हम भी आपकी तरह जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, घर में रहते हैं, फिर भी हम नियमों का पालन क्यों करते हैं। तो प्रिया, इस बात को आप भारी ना लें, टेंस ना हो जाएं। उसने कहा माना हार्ड एंड फास्ट उसी समय मुझे धारण कर लेना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो उन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ऐसा करो तो अच्छा है। अब आप उस पर सोचो कि ये हमें क्यों करना है और करने से फायदा क्या है।
पर दीदी, जैसे वो बोलते हैं, वो प्रिया भी बोल रही हैं कि टीवी नहीं देखना, इंटरटेनमेंट बंद हो जाएगा अगर हम टीवी नहीं देखेंगे, मूवीज नहीं देखते, प्रोग्राम्स नहीं देखने, भगवान में लीन हो जाओ, तो ये तो बहुत टफ है ना।
नहीं नहीं, ऐसा है कि फिल्में नहीं देखो या टीवी नहीं देखो, ये कहने का भावार्थ ये है कि जो चीजें हिंसक उसमें बताई जाती है या कोई अश्लील बताई जाती है, हमारे जीवन के नियम संयम के विरुद्ध जो चीजें दिखाई जाती है, क्योंकि जब संसार की वास्तविकता दिखाने के हिसाब से फिल्में बनती है तो वो चीजें वो दिखाएंगे। अब इंसान जो कुछ देखेगा, आप बताओ उस पर व्यक्ति का विचार चलेगा या नहीं?
हाँ, वो असर पड़ेगा,
असर पड़ेगा ना। और जो चीज आप देखेंगे वो धीरे धीरे आप पर आप फॉलो भी होते जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें अश्लील और हिंसक मार फाड़ की जो चीजें होती है, ऐसे फिल्में, ऐसे दृश्य हमें नहीं देखने चाहिए। क्योंकि बार बार जो चीज आप देखते रहेंगे अनोइंगली, वो आपकी पर्सनालिटी को ऐसे प्रभावित करेगी कि धीरे धीरे कब आप अपने मॉरल से खिसक जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिल्में जो अच्छी हैं, जो अच्छे सबक सिखाने वाली चीजें, आज टीवी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी आते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, एजुकेटिव होते हैं, तो हमें बहुत कुछ डिस्कवरी में तो कितना हमें नॉलेज मिलता है, कई हिस्टोरिकल होती है तो हमें बहुत कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी मिलते हैं। पर कहने का भावार्थ ये है कि अश्लील और हिंसक चीजें ना देखो, बाकी हमें अपना मनोरंजन अच्छी बातों से, नॉलेज से करना है, और वो तो हम कर सकते हैं, इसकी कोई मनाई नहीं है।
पर दीदी जैसे ही ये बोल रही हैं कि वहाँ की मींस जो दीदी थी, जो आपके संस्था में जो दीदी हैं, उन्होंने बोला फ्रेंड सर्कल से दूर रहना है, तो जैसे लड़के भी फ्रेंड होते हैं हमारे यहाँ पर ऑफिस में, अगर हम काम करते हैं तो लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, तो लड़के से भी हमें बात करनी पड़ेगी, लड़कियों से भी, तो उनसे उन्होंने बोला कि जैसे दूरी मेंटेन करके रखो, तो ऐसा क्यों दीदी?
नहीं नहीं नहीं, हर चीज का भाव समझना होता है। देखो लड़के या लड़की हर एक भगवान के बच्चे हैं, हर एक आत्मा भाई भाई है, वो हमारे साथी है, फ्रेंड्स है, हम उनसे क्यों नहीं बात करेंगे? हमें हर एक से घुल मिल के चलना है, बातचीत करनी है, और आखिर कार्य क्षेत्र में तो आप ही एक दो के साथी होते हैं, तो एक दो से आपको नॉलेज भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और समय पर आप ही एक दो को मददगार बनेंगे, तो उसकी कोई मना नहीं है। पर वो जो कहते हैं आपको कि थोड़ा दूर रहना, कहने का भावार्थ ये है कि हमें सबसे अच्छाइयाँ सीखनी है, सबसे हमें अनुभव की बातें सुनकर अपने नॉलेज को बढ़ाना है, पर हमें गलत बातों का रंग नहीं लगाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतने फ्रेंडशिप के प्रभाव में आ जाते हैं कई बार कि माँ बाप की सही बात भी हम नहीं सुनेंगे पर फ्रेंड की गलत बात मान लेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। किसी के भी साथ हम फ्रेंडशिप रखें पर हमारा विवेक क्लियर होना चाहिए और राइट और रॉन्ग बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो ज्यादा मतलब दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बोले नहीं, बैठे नहीं, घूमे नहीं, फिरे नहीं, कामकाज ना करें, ऐसी बात नहीं है, पर गलत बातें हमें एक दो से नहीं सीखनी।
और दीदी इनका एक और प्रश्न है, रही बात खाने पीने को लेके, कि हमें बाहर का खाने को अवॉइड करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, और प्याज और लहसुन जो उन्होंने बोला, अनियन को आपने टच नहीं करना है, तो दीदी ये सब चीजें क्यों? अगर भगवान से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान से हम आत्मा से परमात्मा को मिला रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें क्यों?
देखो आज अन्न के बारे में आप ये तो जानती हो ना कि हमारे देश में हमें शुरू से ये सिखाया जा रहा है कि जैसा अन्न वैसा मन, सुनी है ये बातें, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। व्यक्ति जिस प्रकार के विचारों में रहकर भोजन बनाती है, उनके मानसिक स्थिति, विचारों और वाइब्रेशंस का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। माँ या बहन या पत्नी कोई भी गुस्से से, नाराजगी से आपको खाना परोस कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा खाना? नहीं। जब वो प्यार से देते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। अब माँ जिस प्यार से बना के देती है, उस भोजन का अपना एक प्रभाव है, और एक बिजनेस माइंड से होटलों में या रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं भोजन बनाया जाता है तो उसका प्रभाव एक अलग है। देखो मन एक प्रसाद बनाया जाता है तो वो भी भोजन, पर एक प्रभु को भोग लगाना है, उस भावना से मंदिर में जब प्रसाद बनाया जाता है भगवान की याद में, तो उसका स्वाद एक अलग चीज है, उसके पीछे की भावना अलग है। और एक होटल में बनाया हुआ बिजनेस माइंड से वो अलग है,
उसमें वाइब्रेशन
तो थोड़ा जो मन के सूक्ष्म विचार वाइब्रेशंस हमारे भाव है वो उस पर प्रभाव डालते हैं, और उस अन्न को खाने वाला जो होगा, अन्न द्वारा उस व्यक्ति के मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी के बहुत प्रभाव में चलता है, काम करता है, तो हम कहते हैं कि शायद इसने इनको कुछ खिला दिया है, तभी वो इसके प्रभाव में इतना है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारे विचारों का प्रभाव अन्न पर पड़ता है, प्रकृति की हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस विद्यालय में तो साइंटिफिकली ये सब चीजें प्रयोग की गई हैं कि हमारे विचार और वाइब्रेशंस का खेतों में अनाज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब हम मन को शुद्ध कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि जो चीजें मन पर प्रभाव डालने वाली है, अन्न है, वस्त्र है, संग है, दिनचर्या है, ये सारी बातें हमारे मन पर प्रभाव डालने वाली हैं, इनको जितना हम शुद्ध बनाएं इतना अच्छा है। इसलिए सात्विक भोजन के लिए हर आध्यात्मिक उन्नति चाहने कराने वाले लोग आपको कहेंगे ही। आप हमारे शास्त्रों में भी देखो, हमारे भक्ति में भी देखो, गीता में भी देखो, अन्न शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होती है ये कहा गया है।
पर दीदी यहाँ
पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो समझे लहसुन प्याज जैसी है, जिससे हमारा हम क्यों डालते हैं, हमारा टेस्ट बढ़ता है कि आज तो बड़ा टेस्टी
खाना हमने है ना,
तो टेस्ट स्वाद वृत्ति हमारी उत्तेजित हुई ना, तो वो इंद्रिय रस हो गए। आध्यात्मिकता का पहला पाठ ही क्या है कि हमें इंद्रियों के आकर्षण से न्यारा रहकर आत्म उन्नति के तरफ फोकस होना है। अब जो रस और स्वाद में चला जाएगा मन, तो फिर आपको अपने आप में एकाग्र होने में, परमात्मा में एकाग्र होने में टाइम लगेगा। इसलिए ये चीजें जितनी सात्विक और शुद्ध होगी उतना हमारा मन ज्यादा बहकेगा नहीं। उस हिसाब से हमें सिखाया जाता है कि अन्न शुद्धि, संग शुद्धि, दिनचर्या हमारी सात्विक, ये सब चीजें जो हमारी सराउंडिंग है, लाइफ से रिलेटेड है, वो जितनी अच्छी होगी हमें फायदा है। इवन आप देखो, लोग कहते हैं ना, एक सेइंग भी है कि भाई उसके ड्राइंग रूम में कौन सी किताबें हैं वो मुझे बता दो, तो इससे मुझे पता, मैं कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति कैसा होगा। माना हमारा रीडिंग, हमारा पढ़ना, किस प्रकार की किताबें हम पढ़ते हैं, इससे हमारी मानसिक वृत्ति प्रवृत्ति का ख्याल आता है।
पर दीदी ये बोलते हैं कि जब से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये आपको बोलेंगे कि आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसे करने से भगवान नहीं मिलता है। तो मैं उनके माइंड को कैसे चेंज करूं, अपने फ्रेंड्स को क्या समझाऊं?
प्रिया, पहले उनके माइंड को चेंज करने की बात छोड़ो, खुद को
चेंज करो
अच्छी तरह से। पहले तो ज्ञान के हर सत्य से, ज्ञान के हर बातों से, जो हमें नियम, संयम, मर्यादाएं, अभ्यास, धारणाएं, जो कुछ वहां सिखाया जाता है, पहले हम उसको लॉजिकली समझे, पहले हम तो समझे, अमल भी बाद में बात है, पहले मैं खुद तो समझू, बौद्धिक लेवल से तो मैं कन्विंस हो जाऊं। और जब हम खुद कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये सही बातें हैं और जीवन में कल्याणकारी बातें हैं, फिर उसको धारण करना बिल्कुल सहज हो जाएगा। और जो चीज हमारे धारणा में आ गई वो दूसरे को कन्विंस करना और इजी हो जाता है।
पर इनको
तो थोड़ा सा जो विद्यालय का साहित्य है, क्योंकि आप केंद्र पर जाएंगे तो एक घंटा देंगे, दो घंटा देंगे, अब उसमें भी आपके लिए बहने जितना टाइम दे सकेगी उतना टाइम वो आपको बताएंगे, पर आप खुद भी ईश्वरीय ज्ञान का, इस विश्वविद्यालय का जो साहित्य है वो आप अच्छी तरह स्टडी करिए। ये अन्न शुद्धि, सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य, इन बातों पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आपको लॉजिकली भी रीजन मिलेंगे कि हमें इन नियमों को क्यों पालन करना चाहिए। अच्छा, आज इतनी मिलावट बनावट चीजों में होने लगी है, खाने पीने की चीजों में, कि लोग कहते हैं ना कि भी सोच समझ के खाओ। तो इसमें तो और ही इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमें नियम सिखाए जाते हैं कि आप खुद बनाकर, आप खुद हर प्रकार की चीजें बनाना सीखो और खुद बनाकर स्वच्छता से बनाकर अच्छी तरह से आप खाओ, कोई मना नहीं है। आप खुद बनाएंगे, स्वच्छता भी रहेगी, इकोनॉमी भी रहेगी, भगवान की याद में आप बनाएंगे और ही कम खर्चे में आप खुद भी खा सकेंगे, परिवार को भी खिला सकेंगे, न सिर्फ स्वच्छ लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन खा सकेंगे और भोजन बनाने की कला का हमारे में विकास होगा, वो और एक फायदा होगा।
पर दीदी, जैसे ये बोलते हैं कि आपने बिल्कुल सही बोला कि पहले अपने आप को चेंज करें तभी फ्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं, पर जब इनको फ्रेंड्स बोलते हैं तो बोलते हैं, मुझे गुस्सा आता है कि ये उस अगर जिस संस्था में नहीं चल रहे हैं तो उसका मजाक तो मत उड़ाएं। तो मैं उस जब वो मुझे ऐसे बोलते हैं तो मैं उनको क्या सजेशन करूं कि ऐसा मत बोलो, क्या उनको समझाऊं?
आप रिएक्ट नहीं करो प्रिया, जब कोई भी चीज नई हम जीवन में अपनाते हैं तो जब तक लोग नहीं समझते हैं ये रिएक्शन तो आना ही है। आप मानव समाज का इतिहास देखिए कि जिसने भी एक रीढ़ीवाद से हटकर, एक करंट प्रवाह से हटकर कोई नई चीज किसी ने की तो विरोध तो होता ही है, जब तक कि सब लोग समझे
रोक टोक
तो होती ही है। आप गांधी जी ने इतना सही बातें समाज के आगे रखी, उनको भी तो कितना सुनना पड़ा। इवन गैलीलियो की बात आपने पढ़ी होगी कि उस जमाने में जब उसने कहा कि पृथ्वी गोल है तो उसको जेल में बंद कर दिया गया। तो एक रीढ़ी और एक जो बातें चल रही है उससे हटकर जब नई बात हम समाज के आगे रखते हैं तो विरोध होता है,
तो उसमें जल्दी
इसलिए हमें गुस्सा क्यों होना है? उनको वो जानना चाहते हैं तो हम उसको बोले कि देखो आप भी केंद्र की मुलाकात ले सकते हैं, मैं तो अभी नई नई हूँ, मेरे पास इतना डेप्थ नहीं है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकूंगी, बेटर ये है कि आप खुद जाइए और खुद अपने लॉजिक से, अपने विवेक से वहाँ की बातें समझिए।
दीदी, जैसे ये बोलते हैं कि घूमने फिरने के लिए जो वो रोक टोक करते हैं कि आपको ज्यादा घूमना नहीं है, ज्यादा बाहर नहीं जाना है, तो इसका कारण क्या है?
घूमना फिरना हेल्थ के हिसाब से जो जरूरी है वो तो हमें घूमना ही है, कामकाज के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं आना जाना होता है, पारिवारिक संबंधों के हिसाब से जो जरूरी हो वहाँ आपका जाना आना होता है, प्रकृति से हमारा प्यार है तो अच्छे अच्छे स्थानों पर हम अपने आनंद के लिए और एक रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे, उसकी कोई मना नहीं है। लेकिन हमें बेवजह ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बिना सोचे समझे कहीं नहीं जाना है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि जिन स्थानों के बारे में हम पूरा जानते नहीं हैं और हम किसी के कहने पर वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी बातें हैं, फिर वो चीजें हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। तो थोड़ा जिस प्रकार से आप चारों ओर के समाचार अखबारों में भी पढ़ते हैं, घटनाएं भी आजकल सुनते हैं, तो हमें सोच समझ करके जाना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि वहाँ क्या होता है, वहाँ हमें क्यों जाना है। अगर वो चीजें हमारे जीवन में उपयोगी हैं, जरूरी हैं, तो हम जरूर जाएं। अब आज एक अच्छे स्थान पर आप जाएंगे, मान लो कोई अच्छी एक्टिविटीज जहाँ होती है, कोई अच्छी भावनाओं से लोग मिलते हैं, वहां आप जाते हैं। मान लो एक मंदिर की बात करती हूँ, आप मंदिर में जाएंगे, वहां का माहौल अलग है, क्योंकि लोग ईश्वर को याद करने की भावना से वहां इकट्ठे होते हैं, तो वो वायुमंडल भी उस प्रकार का होता है। पर आप एक
देखने जाते हैं या भीड़ भाड़ में जाते हैं,
शराब खाने में जाते हैं, कोई क्लब में जाते हैं, कोई थिएटर में जाते हैं, वहाँ लोगों की मानसिकता क्या होगी?
चेंज होगी, डिफरेंट होगी।
तो हमें उस हिसाब से कौन से स्थान पर जाना चाहिए और कौन से स्थान पर नहीं जाना चाहिए,
वो तो खुद को ही डिसीजन लेना
तो
है कि अच्छी जगह।
ये जो नियम बताए हैं वहाँ प्रिया आपको बहन ने, उसका भावार्थ ये है कि जीवन में आहार का जैसा प्रभाव, विहार का भी प्रभाव है। विहार माना इंसान कैसे कैसे स्थानों पर घूमता है,
उसको डीपली समझना है प्रिया को।
तो जो चीजें हम खुद भी विवेक से समझते हैं कि हमें अपने जीवन में ये सीखनी नहीं चाहिए, पर समझो आपका संग ऐसा है, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उनको वो चीजें अच्छी लगती, उनके साथ आप वहाँ जाएंगे तो आपका भी नाम तो खराब होगा। तो और आजकल वो चीज हम देख रहे हैं कि फ्रेंड्स के संग में क्या क्या, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, हमारे घर के अच्छे संस्कार भी हम खराब छोड़ देते हैं और उन मित्रों के संग में कई बुराइयों का शिकार हम हो जाते,
कई बार फ्रेंड मिसयूज भी कर लेते हैं।
तो इसलिए ये हमें सावधानी बरतनी है और अपने आप को सेफ या स्वस्थ रखने के लिए हमें इन सब चीजों को, संग, आहार, विहार, व्यवहार, पहरवा, स्थान, दिनचर्या, इन सब बातों को जितना अच्छा हम कर सके, खुद को ही फायदा है।
तो मुझे लगता है जो प्रिया आपको दीदी ने समझाया, वहाँ सेंटर वाली दीदी ने या केंद्र में जहाँ पर भी आप गए हैं, तो दीदी की जो बातें हैं वो पॉजिटिव वे में लें, उनको पॉजिटिव में समझें कि उन्होंने क्यों रोका, क्यों मना किया, उसको डीपली उसकी गहराई में जाएं, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक ही सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। प्रिया दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत खूब समझाया प्रिया को, जैसे समझ आया ही होगा आपका क्या कहने का भाव था और वो दीदी का कहने का क्या भाव था, उन्होंने बहुत खूब समझा होगा। तो दर्शकों, कल आपसे इसी समय हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।